नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पाद की खरीद से होकर गुजरता है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में आज श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए उन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिनमें खादी सबसे प्रमुख थी।
बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #VocalForLocal के साथ शेयर भी करें।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले वर्ष 31 मार्च तक देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नई दिल्ली में आज नक्सल मुक्त भारत से संबंधित एक कार्यक्रम के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत के 3 प्रमुख आंतरिक सुरक्षा हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद कॉरिडोर में हिंसक घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही थी। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के तिरियार पानी के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। इन माओवादियों पर 14 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक SLR, एक राइफल, एक 12 बोर की बंदूक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। तमिलनाडु सरकार ने करूर में एक रैली में हुई भगदड़ की दुखद घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इस रैली में 40 लोगों की जान चली गई और 80 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना कल अभिनेता से नेता बने और TVK के संस्थापक विजय के स्वागत में आयोजित विशाल सभा के दौरान हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर हटा लिए गए आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को 10 वर्षों बाद दोबारा लागू कर दिया है। वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के लगातार परमाणु प्रसार और सहयोग की कमी का हवाला देते हुए समझौते की स्नैपबैक प्रणाली को लागू कर दिया है। इस वर्ष जून महीने में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद ईरान द्वारा जांच को स्थगित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। दिल्ली क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है। BCCI मुख्यालय में आयोजित वार्षिक आम बैठक में आज नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मोहर लगी है। बोर्ड के 37वें अध्यक्ष बने मन्हास अब रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। और खेलों में एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।